हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत कथा में आए सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। तो सातवें स्कंध से हम लोग चैप्टर 14 और वर्स आखिरी है इसका। चैप्टर का नाम था आदर्श पारिवारिक जीवन, आइडियल फैमिली लाइफ। और इसमें जो प्रवचन कर रहे हैं वो नारद मुनि जी कर रहे हैं, और जो प्रश्न कर रहे हैं वो युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज परिवार जीवन में है, पारिवारिक जीवन में, और नारद मुनि जी ब्रह्मचारी। और बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने एक आदर्श जीवन परिवार में कैसे जीना चाहिए व्यक्ति को, उसके बारे में बताया। आप लोगों ने भी शायद विवाह से पहले इस अध्याय को पढ़ा होगा। पंडित ने बोल दिया होगा नहीं हम शादी नहीं करा सकते जब तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़े, ऐसा होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन ठीक रहते भी नहीं, इसलिए परिवार ज्यादातर कोर्ट में मिलते हैं या हॉस्पिटल में मिलते हैं या फिर दूसरी जगहों पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में तो नहीं पढ़ा, स्कूल में तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, साइंस पढ़ा, परिवार के जीवन से लेना देना था ही नहीं। हमारा कितना जीवन परिवार में बीतता है, पूरा जीवन ही परिवार में बीतता है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन वो जीना कैसे है इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बताया जाता। थोड़ी सी वैल्यू एजुकेशन के नाम पर, मॉरल एटिकेट्स के नाम पर कुछ चीजें सिखा देते हैं, वॉक ऑन योर लेफ्ट, ऐसे स्पून पकड़िए, ऐसे चलना चाहिए, आजकल का ट्रेंड ये है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, एक्सपर्टीज सिखाते हैं, स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं, बट कैरेक्टर पर कहीं पर कुछ नहीं मालूम है। इसलिए पारिवारिक जीवनों में उथल पुथल मिलती है देखने को। और हम लोग ये उस समय सुन रहे हैं इस आदर्श जीवन पारिवारिक जीवन को, जब हमारी पारिवारिक जीवन ऑलमोस्ट कईयों की खत्म होने को है, कईयों के बीच में है, कईयों की खराब हो चुकी है, कई सुधारने के प्रयास में है। बट स्टिल कहते हैं कब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। तो जब भी जाग जाएं तो उससे हमारा फायदा है। तो इसमें बड़े सुंदर ढंग से शुरुआत है, कुछ वर्सेस के बारे में बताने की कोशिश करें। जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि जी से पूछा कि हमको परिवार में कैसे जीना चाहिए, राजा है उसके बावजूद भी नारद मुनि जी से पूछ रहे हैं। फिर नारद मुनि जी ने बताया कि किस प्रकार हम लोगों को विरक्त भाव से परिवार में रहना चाहिए, धन उपार्जन करना चाहिए लेकिन उसके लिए मरना नहीं चाहिए। धन का उपयोग शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए होना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए और बाकी समय भगवान की और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो भक्तों के संग में रहकर कृष्ण के विषय में सुनने से हमारी जो अटैचमेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस संसार से, जहां पर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे और उनको दुख कर हमें भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए। हमें लगता है कि सक्सेसफुल लाइफ वही है जो व्यक्ति हर समय अपने इंद्रियों का कर्तन कर रहा है, सुबह शाम खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है कि ये जीवन बेस्ट है और उसी से समाज भरा हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज राजा होते हुए भी पूछ रहे हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, आदर्श लाइफ क्या है। तब भगवान सॉरी नारद जी बता रहे हैं कि विरक्त भाव से जीना चाहिए, उतना कमाना चाहिए जितना आसानी से मिल जाए और सुबह से लेकर शाम तक भागते नहीं रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके पास समय काफी बचेगा जो आसानी से कमा लिए, जिसमें आप अपना भरण पोषण कर सकते हो, परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, सर पर छत है, चार दीवारें हैं, काफी है। और जिन्हें यह मालूम है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है तभी तो वो ऐसा करेगा, जिसे लक्ष्य नहीं मालूम तो वो तो वैसा करेगा जिसे संसार में लोग कर रहे हैं। तो जिन्हें लक्ष्य मालूम है जीवन का, वही लोग इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए वास्तव में, जब परिवार में भी आ जाए। और जिन्हें लक्ष्य नहीं मालूम तो उनके लिए लक्ष्य है इंद्र तृप्ति, कि खाओ पियो ऐश करो, यही जीवन है। तो जब जो इस मेंटेलिटी के लोग हैं, खाओ पियो ऐश करो के लोग, और वो आ जाए भगवतम क्लास में आ जाए ऐसा करके प्रवचन सुने, तो उनको लगेगा ये क्या है, ये तो एस्केपिज्म है। तुम है ना, जैसे हम लास्ट टाइम बता रहे थे, जब लोग MBAs करते हैं तो स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, टारगेट्स कैसे मीट करने हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है, मार्केट में सेल्स कैसे बढ़ानी है। क्यों बताया जाता है ऐसे? क्योंकि वो कहते हैं कि जो जितनी चादर है उतनी पैर पसारने वाली, तो कहावतें पुरानी है, पुराने लोगों ने बोली थी, बेकार है ये सब। अब का जो जमाना है वो क्या है, आप अपनी इच्छाओं को मारो मत, मन में जो आ रहा है कर डालो, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। और वो करने के लिए अपनी इच्छाओं को मत मारो, जो इच्छाएं हैं आपके पास उन इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करो। आप क्यों मारते हो? क्योंकि आपके रिसोर्सेज कम है, आपका पैकेज है 1 लाख का, आपकी डिजायर है 5 लाख की, तो क्या करो? हां, और मेहनत करो, और चोरी करो, और धोखा दो, अपना पैकेज कहां तक कर लो? 5 तक का कर लो, सो दैट आप वो 5 लाख वाला मीट कर सको। लेकिन जब तक व्यक्ति 5 लाख तक वाला मीट करता है, तब तक क्या होता है, वो डिजायर और बढ़ चुकी होती है। फिर वो यही बताते, कहते नहीं हार नहीं मानना, आलसी नहीं बैठना, और मेहनत करो, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, रात को थोड़ा लेट आओ, ओवर टाइम लगाओ, और जो और डिजायर डेवलप हुई है उसको भी मीट करो। इच्छाएं मत मारो अपनी, क्यों इच्छाएं मारकर आप परेशानी में जीते हो, दुखी जीते हो, देख रहे हो कि वो इंजॉय कर रहा है, वो भी इंजॉय कर रहा है, तुम क्यों नहीं इंजॉय कर रहे, है ना? तो पूरे का पूरा समाज का केंद्र बिंदु यही है इंद्रदित्य। और पुरानी जो कहावतें थी, जितनी चादर उतने पैर पसारो, उसका मतलब क्या था कि भैया जितना रिसोर्सेज हैं उतने में ठीक है, ज्यादा भागने कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम जब ज्यादा देखते हैं तो उतनी डिजायर डेवलप होती है, उतना कुछ होता नहीं है, तो हमारे दुखों का कारण बनता है, और उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं वो भी दुखों का कारण बनता है, और इस प्रकार हमारा जीवन संघर्ष अति चलता रहता है। और फिर अचानक हमारी गाड़ी के आगे, हमारी बस के आगे एक ऑटो दिखता है जिसपे लिखा होता है जीवन एक संघर्ष है, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो व्यक्ति और मेहनत करता है, उसको लगता है बिल्कुल सही लिखा है, मैं कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा, वो सेमिनार करता है, सेमिनार अटेंड करता है 10,000 रुपए देकर कि सर तरीके बताओ, अमीर बनने के तरीके बताओ, है ना? जैसे हम पुरानी कहानियों में सुनाते हैं कि एक व्यक्ति को नदी में आम दिखाई दे रहे हैं, छलांग मारता है आम हाथ में नहीं आता है, दूसरे ढंग से छलांग मारता है तो भी हाथ में नहीं आता है, परेशान हो जाता है कि आम क्यों नहीं हाथ में आ रहा, दिख तो रहे हैं। फिर किसी की मदद लेता है, कहते सर ये आम पकड़ने, कहते आप गलत छलांग मार रहे हो, आपको दोनों पैरों को हाथ को इकट्ठा करो, ऐसे करो, जब डाइव लगाओ तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहता अच्छा वो वैसे डाइव मारता है तो भी हाथ में नहीं आता है, परेशान हो जाता है हम क्यों नहीं हाथ मारे, दिखाई देता है। फिर अचानक जो है एक व्यक्ति मिलता है उसको, ऐसी किताब देकर बेचता है, कहता सर नदी में आम पकड़ने के 108 नुस्खे, 108 नुस्खे केवल 10 रुपए में, उसको खुद भी नहीं मिले आम, लेकिन किताब बेच रहा है। कहते अच्छा ये किताब मुझे दो, तो फिर उसमें बड़े सारे तरीके लिखे होते हैं, इस मुहूर्त में छलांग मारो, इस अवस्था में छलांग मारो, ऐसे मारो तो पकड़े जाएंगे, इस दिशा में मारो तो पकड़े जाएंगे, वास्तु का ध्यान रखना, ज्योतिष को हाथ दिखाना, थोड़ी दाल चढ़ा दो कहीं पर, फिर छलांग मारो, बड़े तरीके लिखे, सारे तरीके पूरे करने के भी आम हाथ में नहीं आते, फिर परेशान होकर बैठ जाते, दुखी रहता है। फिर वो कंसल्टेंसी ऑफिस में जाता है कि सर आम नहीं हाथ में आ रहा है, वो कहता क्यों नहीं आ रहा है आपने, अब 5,000 रुपए दो आम हाथ में आएगा, वो कहते अच्छा, वो कहते ये सर ये नई मशीन आई है मार्केट में, इसमें रडार लगा, रडार आप जहां पर आम है इसको फिट कर दीजिए, वहीं पर घूम कर जाएगा और बताएगा किस तरह छलांग लगानी है आपको, वो कहते अच्छा, वो ऐसे छलांग लगाता है फिर भी आम हाथ में नहीं आता, बड़ा परेशान होता, कहते ऐसे भी नहीं आया, और लोग भी सजेशन थे, परिवार वाले भी आते, कहते आम हाथ में नहीं, तेरा दिमाग खराब है आम क्यों नहीं हाथ में आ रहा, काली रात में काले चने की दाल, काली तो नहीं होती ना, काली माँ की दाल होती है, वो चढ़ाओ काले घोड़े को, फिर आएगा हाथ में, वो तो भी हाथ में आता, कहते चाकू पकड़ो, कहते इसका क्या करो, कहते आम हिल जाता है, तो छलांग मारो सीधा आम पर मारो तो आम हाथ में आएगा, नहीं आता। परेशान दुखी व्यक्ति बैठा है, संघर्ष कर रहा है, अगर आम हाथ में नहीं आ रहा, अचानक साधु आता है, कहते सर बड़े परेशान दिख रहे हैं, कुछ आम खाते क्यों नहीं, कहते आम ही तो हाथ में नहीं आ रहा कहते क्यों, कहते ये देखो कब से छलांग मार रहा हूं, ये सब किताबें पढ़ी हैं, इतनी पढ़ ली मैंने, आज तक हाथ में नहीं आया। कहते भाई साहब आपकी गलती पता क्या है, आप आम दिखाई दे रहे हैं आपको, आप छलांग भी मार रहे हो, लेकिन आप जहां कुछ छलांग मार रहे हो आम वहां पर नहीं, आम तो ऊपर पेड़ पे लगा है, ये उसकी परछाई जो नीचे पड़ रही है। कहते हैं तो क्या क्या करना होगा, ना पेड़ पे चढ़ना होगा, आम खाना होगा। कहते बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जो है समय बचा लिया। हमारी स्थिति भी ऐसी है, कैसी, आम पकड़ने वाले हम लोग भी उस सुख को, उस आनंद को खोज रहे हैं, और कहां पर खोज रहे हैं, इस संसार में खोज रहे हैं, हमें लगता है कि आम मिल जाएगा, और भी तो तैयारी कर रहे हैं, और भी तो प्रयास कर रहे हैं, सब संघर्ष करते हैं, सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, लेकिन बस ये दिखाते हैं कि हाँ हम अब तक इतने आम खा चुके हैं, हमारे पास तो घर में ये आम है, दुशहरी आम है, लंगड़ा आम है, पता नहीं कौन कौन सा आम है, सब आम है, लेकिन मिल है नहीं, हमें लग रहा कि उसके पास है, झूठ बोल रहे लोग, स्माइल दिखा रहे हैं बाहर आकर, हमको आम मिल गया, हम बड़े खुश हैं, लेकिन किसी को नहीं मिलता। जैसे सर्कस लगता है जब एक रुपए में टिकट मिल रही है, सर्कस दिखा रहे हैं लोग, लंबी लाइन, शर्त केवल एक है कि एक समय में एक ही आदमी अंदर आएगा, ठीक है, एक रुपए की टिकट ली, अंदर चला गया आदमी, अंदर कोई नहीं है, ना कोई सर्कस, ना कोई चेयर, ना कोई आदमी, चिल्ला रहा है कहां है सर्कस, लूट लिया आपने हमें, लूट नहीं लिया, अचानक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है, 13 फीट का आदमी बाहर आता है, लंबे चौड़े हाथ खली जैसा, कहते सर्कस दिखाओ, कहते सर्कस देखना भी दिखाता हूं, इधर जोर से थप्पड़ मारता ठां, इधर से मारता ठां, उठा के धोबी फटका मारता ठां, उसकी बुरी हालत छोड़ दो, भागने दो, जाने दो, कहता नहीं अभी और सर्कस देख, पूरा 1 रुपया खर्चा तूने, और मारता उसको, बुरी हालत कर देता है, भागते भागते भाग निकलने की कोशिश करता, देख तो बहुत लंबी लाइन है, मेरे रिश्तेदार भी खड़े हैं, मेरे पड़ोसी भी खड़े हैं, सारी दुनिया खड़ी, हाथ में 1 रुपए का टिकट लेके, तो साइड में शीशा लगता है, बाल सही करता है, कलर ठीक करता है, और दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है, लोग कहते क्या हो, कमाल का जरूरत था, ऐसा जरूरत में आज तक नहीं देखा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, टिकट ब्लैक होने लगती है, कहते हाँ हम भी जाएंगे, कहते जाओ ना, दूसरा आदमी अंदर जाता है, कहां सर्कस, कौन है सर्कस, किधर है सर्कस, अचानक बाहर आता आदमी, कहते गर्गुड़ी सर्कस देख रहे, कहते हाँ, कहते तू भी देख सकता, उसको भी मारता ठां मारता, इधर से मारता, ऊपर से फेंकता उसको, बुरी हालत हो जाती है उसकी, वो समझ जाता पहले वाले ने शायद यही सर्कस देखा था, लेकिन बताया नहीं था, तो बाहर निकलने लगता, देखता भोग तो भी लाइन है, कहते अच्छा भी अपने को सेट कर दो, सब ठीक कर दो, बाहर निकलता, कहते कैसा था, कहता बहुत बढ़िया, ऐसा सरकार आज तक नहीं देखा, आप भी जाओ अंदर, और सबकी मकसद को मार पड़ती है, ये सर्कस जो है ये भौतिक संसार है, और हम सब लाइन में लगे हैं आनंद की खोज में, आनंद के लिए, और अंदर जो 13 फीट का आदमी खड़ा है, जो मार रहा है सबको, पीट रहा है, वो खली जैसा व्यक्ति कली है, वास्तव में खली नहीं हुआ कली, कली मतलब कलयुग, वो हमको यातनाएं दे रहा, माया के रूप में हमें खूब पिटाई कर रहा है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान है, कोर्ट केस, खाकी वर्दी वाले परेशान कर रहे हैं, है ना, व्हाइट वर्दी वाले परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ शरीर में कुछ हो जाए सीधे जाओ पहले 10,000 के टेस्ट कराओ, अरे यार जरा से दर्द उदर था, एक गोली दे देते, नहीं नहीं टेस्ट कराओ, टेस्ट करा लिया, चलो जी, ओह आपके अंदर तो ये है और ये है और ये है, जल्दी से ऑपरेशन कराओ नहीं तो खत्म, इतनी ब्लॉकेज, इतना ये, इतना वो, डॉक्टर्स बोलते हैं भैया इसको पूरा डालना अंदर, कम से कम 20 दिन से पहले बाहर नहीं जाना चाहिए, कहते क्यों, कहते इतने बड़े बिल्डिंग का खर्चा तुम्हारा चाचा चलाएगा, तो क्या करना है, कहते 20 दिन तक रख लो उसको यहीं पर, बता दो सारी आर्टिस्ट ब्लॉक है, ऑपरेशन नहीं कराएगा तो ये स्टंट डलवाओ, ये है 3 लाख का, ये है 2 लाख का, अच्छा कितने का चलिए, कहते सर अच्छा से अच्छा डालो, मेहनत किस लिए करी थी, इतनी ओवर टाइम क्यों लगाए थे, कॉल सेंटर में क्यों जाग रहा था, इसीलिए ना कि जब बीमार होगा तो 5-स्टार हॉस्पिटल में एडमिशन होगा, वहां जाके इलाज कराऊंगा, तो लगाओ 3 लाख का स्टंट, कहता ये लो अमेरिका से आया, डालते चाइनीज का, डाल दो कौन देख रहे, उनको अपने खर्चे पूरे करने हैं, डॉक्टर को अपनी सैलरी पूरी चाहिए, और आप गए हो कलेशों से परेशान, दुखी परेशान, इस तरह की हालत हो गई है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको लोगों ने बताया जो ये करते हैं ऐसा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार कोर्ट केसेस, घर घर के केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, भाई भाई। जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय मुनि से सुना कि घर घर में लड़ाई होगी, भाई भाई एक दूसरे खून का प्यासा होगा, प्रॉपर्टीज के केसेस होंगे, कहते हैं अच्छा हम ज्यादा मत बताओ, रहने दो, बहुत हिम्मत की, इससे पहले निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। आज की बातें बता रहे थे, हमारा एक डिवोटी है, उस दिन वो आया मंदिर में, कहता मैंने कहा क्या कर रहे, कहते LLB कर लो, कहते LLB हो गई या वकील हो गए होंगे, कहते अच्छी बात है, मैंने कहा, कहते प्रभु जी लेकिन कमाल है वास्तव में, यानी संसार सच में जो शास्त्रों में लिखा ना दुखाल्य है, वास्तव में दुखाल्य है। कहते हैं लगता है वो हस्बैंड वाइफ बड़े मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, लगता है वो भाई भाई ये घर में एक ही छत में रह रहे हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तो अपने दिल हमारे सामने खोलते हैं, इसको ऐसी धारा में फंसाओ कम से कम 20 साल तक बाहर ना निकल पाए। पत्नी जो है जो 7 फेरे लिए थे और 7 प्रकार की कहानियां करी थी, मैं ऐसे साथ रखना, ऐसे साथ रखना, कहते ऐसा कुछ नहीं है, सारी की सारी गंदगी, सारी की सारी दिल अपने खोल कर दिखाकर पता चलता है कि उसको भी फंसाओ, सास को भी फंसाओ, ननंद को भी फंसाओ, बट वो ननंद तो कभी घर आई नहीं, नहीं उसको भी फंसाओ, इसको भी फंसाओ, सब अंदर। और पति देव भी जो है, पति देव को क्या बोलना चाहिए आजकल, तो देव शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी खतरनाक है, टॉर्चर, जो जेलों में टॉर्चर करना था घर पर टॉर्चर करते हैं। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार की संस्कृति जन्म ले चुकी है, और इस प्रकार के संघर्ष रूप जीवन में जहां भगवान ने इस सृष्टि को बनाया हम जैसे जीवात्मा की इच्छा पर कि एंजॉय करना चाहते हैं, जब यहां पर आते संसार में और उस सो कॉल्ड एंजॉय के साथ इतना संघर्ष, इतने दुख, इतनी तकलीफें मिलती हैं, तब जाके हमें वो साधु मिलता जो बताता कि आम कहां है, असली में आम कहां है। भगवान कृष्ण से बिछड़ी हुई ये स्वतंत्र आत्माएं जो कि स्वयं भगवान के ही क्या हैं, अंश हैं, भगवान के ही पुत्र हैं, पितामहस्ते जगतो माता धाता पितामह, मैं ही माता पिता हूं इस जगत का, ये सब जीवात्माएं मेरे ही द्वारा उत्पन्न की गई हैं, सभी योनियों में मैंने ही बीज प्रदान किया है, ये सब मेरे सनातन अंश हैं, मैं चाहता हूं कि सब जीवात्माएं मेरे पास वापिस आए। लेकिन जब मैं कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि है तो मैं फिर से धार्मिक रिलीजियस प्रिंसिपल तो एस्टैब्लिश कर देता हूं, लेकिन मैं हर एक को जाके ये नहीं बोल सकता भाई चैंटिंग कर, मैं ये नहीं बोल सकता भैया यज्ञ कर, मैं ये नहीं कह सकता कि ये ले मेरा क्लियर शास्त्र पढ़, ये श्लोक पढ़ के क्या लिखा है, मैंने क्या बोला है, मैं नहीं बोल सकता ऐसे, मैं तो बोल के चला गया, ये सब छोटे छोटे काम मैं थोड़ी करूंगा, मैं बांटना चाहता हूं वो प्रेम, मैं देना चाहता हूं वो प्रेम, ऐसा फल लगाया चैतन्य महाप्रभु ने जिसमें ऐसे ऐसे आम है, वो आम भी कौन से प्रेम रूपी आम जो कृष्ण प्रेम देते हैं, महाप्रभु कहते हैं मेरे पास 2 ही तो हाथ हैं, कितने दे दूंगा, किस किस को दे दूंगा, तो मुझे और हाथ चाहिए। अरे प्रवचन शुरू कर दिया मैंने, आज तो कुछ बोला ही नहीं, क्षमा कीजिएगा, श्लोक नहीं पढ़ा। तो हम लोग यहां पर फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो आप यहीं से याद करिए कि कहां से बोल रहे हैं। तो आखिरी श्लोक है, और ये जो आखिरी श्लोक है हम इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पीछे बोली श्लोक लिखा है बोर्ड पे, नन्वस्य ब्रह्मण राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादराजसा त्रिलोकीं देवतं महात्। धन्यवाद। शब्दार्थ ननो लेकिन अस्य उसका ब्राह्मण योग्य ब्राह्मण राजन हे राजा कृष्णस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण द्वारा जगत आत्मना जो सारी सृष्टि के जीवन तथा आत्मा है पुनंता पवित्र करते हुए पादरजसा चरण कमलों की धूल से त्रिलोकी तीनों लोक को देवतम पूज्य महता अत्यंत महान। अनुवाद इस प्रकार है, हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे रहते हैं, सारे सृष्टि के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। तात्पर्य श्री लघुपाद के द्वारा श्री लघुपाद की, जैसा कि भगवत गीता 18 अध्याय के 69 वर्ष में लिखा है कि मैं भगवान कृष्ण में भगवान कृष्ण द्वारा स्वीकार किया गया है, ना च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियतमः। सारे जगत ब्राह्मण सारे जगत में कृष्ण भावना मत का उपदेश देते हैं और यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तथा भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं। यह अन्योन्याश्रित संबंध है। जिस प्रकार ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी तरह कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना। अतएव कृष्ण सदैव परम पुरुष हैं। कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से वे ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के अंतर्गत आदर्श पारिवारिक जीवन नाम के 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर वर्ष है, नारद जी बता रहे युधिष्ठिर महाराज, हरे कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं, जो पूरे विश्व में भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं, जो कि सारे सृष्टि के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य भी है और पूजित भी है, भगवान पूरी सृष्टि की आत्मा है, फिर भी भगवान के द्वारा वो ब्राह्मण जो पूरे संसार में प्रचार कर रहे के द्वारा मान्य भी है और पूजित भी, भगवान भी उनकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। मतलब कृष्ण के भी पूज्य कोई है, सारी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है और कृष्ण भी पूजा करते हैं। और इस श्लोक के अनुवाद को पढ़कर लगता है जैसे हम प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी के चरण कमलों की धूलि के कारण त्रिलोकी मतलब पूरे तीनों लोक जो हैं, आज पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं, हर जगह भगवान की कीर्ति का गान हो रहा है। भगवान के जो भक्त हैं, अगर उनके विषय में बात करें कि वो भगवान को क्यों पूज्य हैं, क्योंकि जब हम बता रहे थे कि कृष्ण अवतार लेते हैं, धार्मिक सिद्धांतों को फिर से एस्टैब्लिश करते हैं, धार्मिक सिद्धांतों को फिर से एस्टैब्लिश करने के बाद कौन फॉलो करता है उनको? ब्राह्मण लोग करते हैं, वैष्णव लोग उन सिद्धांतों का पालन करते हैं। और वैष्णव लोग जब उन सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं उन सिद्धांतों को, तो समाज जो इंद्र तृप्ति में लगा है, जिसे जीवन का लक्ष्य नहीं पता, वो ऐसे ब्राह्मणों को ऐसे वैष्णवों को देखकर, प्रसन्न वैष्णवों को देखकर, सुखी वैष्णवों को देखकर, ब्राह्मणों को देखकर, या उनके द्वारा प्रचारित होकर, खुद जब उनको कृष्ण की कथा सुनने को प्राप्त होती है, तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, भगवत भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि भक्ति तो भक्तों के बीच में ही जन्म लेती है, और जब उन लोगों को भक्ति प्राप्त होती है, भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, तो उनका जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का संघर्ष चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उससे उनको मुक्ति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वो भक्त जिनकी चरण रज भी इतनी पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि ऐसे भक्त हर समय कृष्ण के कीर्तन में, कृष्ण के गुणगान में, कृष्ण की कथाओं में आनंद ले रहे हैं। उन्हें जीवन का लक्ष्य पता है और वो उनकी रति है कृष्ण की कथा में। तुम्हार हृदय सदा कृष्ण नहीं गोविंद विश्राम, कृष्ण गोविंद तुम्हारे हृदय में रहते हैं। सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, लेकिन भक्तों के हृदय में साक्षात गोविंद कृष्ण रहते हैं। सबके हृदय में परमात्मा खड़े रहते हैं, लेकिन यहां क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण विश्राम करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान जहां विश्राम करते हैं, तो जहां स्वयं भगवान है वहां भगवान के सारे अवतार भी हैं। जहां स्वयं भगवान विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं, वही वृंदावन है, वहीं पर सारे परिकर हैं। तो जीता जागता चलता फिरता एक भक्त क्या है? तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी। ऐसा पवित्र भक्त जिनके हृदय में कृष्ण है, वो जहां पर भी जाते हैं हर जगह को क्या कर देते हैं? पवित्र कर देते हैं, धाम बना देते हैं। हम लोग भी जाते हैं तीर्थ, है ना? भागवतम कहता है या अन्य ग्रंथों में भी कई बार भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में लोग तीर्थों में जाएंगे, और विशेषकर तीन तीर्थों में जो बहुत दूर हो, जहां पर जाना वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो, और आके बताएंगे प्रभु जी इतना सा रास्ता था, इतना सा, मतलब इधर खाई थी और इधर पहाड़ था, मतलब मरते मरते बचे हम, बस हम वहां गए थे। दूसरा कहता है अच्छा तू वापस आ गए, मैं भी जाऊंगा। क्या रहा क्या वहां किया क्या? कुछ नहीं, वहां पर एक कुंड था, थोड़ा सा पानी था, उस वक्त ठंडा बहुत था, इसलिए आंखें नहीं करके आ गए। गया क्यों था? सुना था बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्गम है, इतनी किलोमीटर की चढ़ाई और इतनी की परिक्रमा, इतनी की मुश्किल, वहां खाना भी नहीं मिलता, सांस लेने में दिक्कत होती है, वहां जाकर एक्सीडेंट होने का जो है हर समय डर लगा रहता है। मतलब इतनी छोटी छोटी सड़कें कि एक गाड़ी आएगी तो दूसरी जाएगी, अगर थोड़ा सा दूसरे को झपकी आ गई तो वहीं से जो है सब लोग नदी में बह जाते हैं। कल भी हमने सुना कि कोई पवित्र स्थान पर को जाने की कोशिश कर रहा था, इस प्रकार के आए दिन खबरों में एक बस के 60 लोग गए, दूसरी बस के भी 60 गए, मतलब भर भर के जाते हैं लोग। और पहाड़ों पे जहां पर बरसात हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, बहुत मुश्किल है जाना, उधर से जो है वो उनका हरिबोल हो जाता है, वहीं से खत्म। फिर ये प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं, प्रभु जी इतने सारे लोग गए थे तीर्थ में गए थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे भैया भागवतम कह रहा है कि कलयुग में लोग जो है ना, जो दूर कहीं तीर्थ होगा, दुर्गम स्थान पर निकलना, फंस फंस के जाना, ऐसी ऐसी गुफा वैसी गुफा, उधर जाएंगे स्नान करने के लिए, पाप धोने के लिए अपने पाप, और घर के पास, घर के नजदीक अगर कहीं कृष्ण कथा चल रही होगी, भागवत पर चर्चा चल रही होगी, उस कृष्ण का गुणगान हो रहा होगा जो सारे तीर्थ जिनके चरणों में है, और वो भक्त जिनके हृदय में कृष्ण रहते हैं, ऐसे भक्त भगवान का गुणगान कर रहे होंगे। जहां सारे तीर्थ आकर कथा सुनते हैं, ऐसे तीर्थों में आके कथा नहीं सुनेंगे, कहां जाएंगे मरने, मतलब दर्शन करने, उधर जहां बड़ा मुश्किल है। भागवत में लिखे और कथाओं में अटेंडेंस देखो, भगवान की कृपा से यहां तो अच्छी है, बट ऐसे बता रहे हैं कई मंदिरों में, कई जगहों पर, पहली बार तो कोई कथा करने वाला नहीं है, व्यास आसन बना दिया, उसमें भी कभी बिल्ली बैठ जाती है, कभी बाहर जाके कुछ बैठ जाता है, बच्चे खेलते हैं उसमें कबड्डी, तो व्यास आसन रखा है, ग्रंथ भी रखा है, लेकिन लोग नहीं है। और अगर कहीं कथा हो भी रही है तो किसको सुनाए? सुनने वाला नहीं। तो ऐसे भक्त लोग जहां पर कथा करते हैं, कृष्ण का गुण अनुवाद करते हैं, लोगों की रुचि नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत की सेवा करनी चाहिए। ऐसी भागवत की सेवा मतलब रोज पढ़कर और सुनकर, और प्लस जिन लोगों ने कृष्ण को अपने हृदय में, ऐसे भागवत जिनके हृदय में कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, ऐसे भागवतों की भी सेवा करनी चाहिए। शास्त्र बता रहे हैं कि ऐसे भागवत लोग जिनके हृदय में कृष्ण हैं, जो इस संसार में आम ढूंढ रहे हैं, आम सुख वाला आम जिन्हें नहीं मिल रहा है, परेशान है, दुखी है, तो ऐसे भक्त बताते भैया यहां नहीं है, कहां है? उधर है। तो कितना देखिए सुख मिला होगा उस आदमी को जो कितने समय से पेड़ मतलब जो छलांग मार मार के आम ढूंढ रहा था, कितना सुख मिला होगा उसको। आम दिखा दे, ये आम, तूने कितनी किताबें पढ़ ली आम ढूंढने की, कितने लोगों से सलाह मशवरा कर लिया, कंसल्टेंसी ले ली, लेकिन आम नहीं लग रहा था आपने। अब तेरे को मैंने बता दिया ये रहा। अभी आदमी कूदेगा नीचे? अभी नहीं कूदेगा, उसको आम दिखाई देगा। अब वो पूछेगा सर इसको चढ़ना कैसे, तरीका बताओ। उसी तरह भक्त आते हैं, भक्त समझाते कि संसार में सुख नहीं है, दुख आ गया अशाश्वतम। बोला दुख आ गया, कृष्ण की वाणी झूठ नहीं है। नहीं नहीं ब्रह्म जी, सुख तो है, क्षमा कीजिएगा, ये जो सो कॉल्ड सुख की जो फील है ना, फील, ये खाली फील है, जस्ट लाइक ए ड्रीम। सुख नहीं एग्जिस्ट करता यहां, बहुत बड़े भ्रम में मत रहिएगा। इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों से टच होना, संघर्ष होना, या और कुछ सुख की अनुभूति करना, यह अनुभूति है खाली। इंद्रियों में सेंसर है, सेंसेस है, सेंसर लगे हैं ना, हां कान नाक जी त्वचा, ये सेंस तो करता है, लेकिन ये मटीरियल है, मैटर है, ये मैटर है, पांच तत्वों से बना है। इसके अंदर कोई फील है? इसको चाहे आप इसमें सोना रख दीजिए, इसमें चांदी डाल दीजिए, इसको कुछ फील होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पांच तत्व तो हैं, लेकिन एक मैटर कम दिया इसको, माइंड इंटेलिजेंस वाला जो फील करता है, बट वो भी मैटर ही है, मटीरियल ही है वो भी, लेकिन थोड़ा सटल मैटर है, जो कि सोल के बहुत नजदीक है, जो सेंस करती है, जो फील करती है, जिसके अंदर आनंद है। तो सोल के आगे ये माइंड है, सटल माइंड, ये फील करता है, वास्तव में है मैटर, अनुभूति होती है इसमें, अनुभूतियां, स्टोर हाउस है, जैसे चश्मा लगाया आपके आगे, है ना, आंखें देखना चाहती हैं तो जो उनका रंग चढ़ाओगे वैसे दिखेगा। अब ये खुद अपने आप में थोड़ी कुछ देखता है, अगर चश्मा रख दिया कल को बोलता है शाम को आज मैंने सुबह से शाम तक ये देखा, नहीं देख सकता। तो भक्त लोग बताते हैं संसार दुखालय, श्रीमद् भागवतम बताता है, कृष्ण की बात की पुष्टि करता है कि भगवान ने अगर बोला कि दुखालय है और अशाश्वतम है तो है। तत्कंधे न, शास्त्र में बोला है कि आप 20 किलो का भार सर पर रख लीजिए तो सर पर दर्द होगा कि नहीं होगा? जब पीक पर पहुंच जाएगा, असहनीय हो जाएगा, 100% तक पहुंच जाएगा, तो आप क्या करोगे? उसको उठाकर कंधे पे रख दोगे, तो रिलीफ मिला कि नहीं मिला? सर से फील अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वहां पर 100 से 90 80 70 50 तक पहुंच रहा है, दुख हमारा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो दुख कम होने को हम सुख समझते हैं, और जो कंधा है जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, उधर यदि 10 20 30 40 बढ़ने लगा, तो अगर देखें सुख कहां है? कहीं भी नहीं है, रिलीफ था, सुख नहीं था वो, और उसकी फील थे नस से शरीर,
इसलिए श्रीमद भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोले कि इंद्रिय तृप्ति में कुछ सुख मिल रहा है, कुछ सुख की अनुभूति हो रही है अगर किसी को, तो उस सुख की अनुभूति उसकी यहां पर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर को बढ़ा रहा है। सरपट में बोलते थे बस, समझ लें, कुछ कर्म करके कुछ इंद्रिय तृप्ति करके अगर किसी को कुछ फील भी हो रहा है कि यस मुझे एंजॉयमेंट मिला, तो वो एंजॉयमेंट की पनिशमेंट क्या है? फिर भव बंधन में आना पड़ेगा। तो शास्त्र साफ साफ बता रहे तू खाल्य है, फिर यहां से उठाकर आपको यहां सो हो गया, यहां जीरो हो गया, यहां से उठाकर अपने यहां रख दिया तो इधर अब कम होने लगा, इधर बढ़ने लगा, तो उसी तरह केवल एडजस्टमेंट हो रही है सुबह शाम खाली। लेकिन भक्त क्या करते हैं, वो जानते हैं कि असली सुख कहां है, इसलिए वो भक्तों को बताने का प्रयास करते हैं कि यहां नहीं है, भगवान के चरणों में है। तो ऐसे भक्त जो भगवान के मिशन को पूरा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं कृष्ण प्रेम देना चाहता हूं बट मेरे पास दो ही हाथ हैं, मैं सबको बांटना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिले, मुझे और हाथ चाहिए। तो महाप्रभु ने और शिष्य बनाए और उन्होंने इन आमों को, इन कृष्ण प्रेम को बांटा। श्रील प्रभुपाद जी आए, उन्होंने पूरे विश्व में बांटा। सोच कर देखिए, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ था, आपन संस्कृतिम घोराम, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ था, अचानक भक्तों का संग मिल गया, कहीं कृष्ण कथा सुन ली, कृष्ण प्रसाद पा लिया, भक्तों के संग में आकर कहते हैं, जब लोग स्नान करने जाते हैं गंगा इत्यादि में, एक आम पानी है गंगा का पानी, आम पन्ना नहीं आम पानी कह रहे, एक आम मतलब साधारण जल है, लोगों का तो फिर चला जाता दिमाग कि हाँ ये पीएंगे, आज आम पाना बोला था पहले, बड़े दिन से पिया नहीं। तो साधारण जल है और एक कृष्ण के चरणों को छूता हुआ जल आ रहा है, क्या है वो? गंगा। साधारण जल तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उस गंगा जल में स्नान करने से क्या होता है? पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शास्त्र कह रहे हैं ऐसे भक्त, जो भक्त भगवान की कथा गुण अनुवाद में लगे रहते हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, तो ये गंगा ने जब देखा कि भगवान वापस जा रहे हैं अपने धाम स्वगता, अपने धाम वापस जा रहे, तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मुझे भी ले चलो, कलयुग शुरू हो रहा है, मुझे यहां के छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा भाई कलयुग के लोग भी तो, अब तुम मेन बिजनेस तो अब है, बहुत ज्यादा पापी होंगे, बहुत ज्यादा पापी होंगे, तो हाँ उन्हीं के पापों से तो डर रही हूं मैं, मेरे में स्नान करेंगे तो मुझे भी गंदा कर देंगे, कंटैमिनेट कर देंगे। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम यहां रहो उनके उद्धार के लिए, लेकिन तुम जब जब मैली हो जाओगी या तुम जब जब कंटैमिनेटेड होगी या जो तुम्हें डर लग रहा है तो क्या होगा, मेरे भक्त आया करेंगे इस्कॉन से, 16 माला करेंगे, है ना, मेरे भक्त होंगे, मेरे कृष्ण गुण अनुवाद में लगे रहने वाले भक्त जब आकर ऐसी नदी में स्नान करेंगे, तुम में स्नान करेंगे, तो तुम फिर से पवित्र हो जाओगे। अब मुझे ये नहीं पता तालियां किस लिए हो रही है, भगवान के लिए अपने लिए हम स्नान करेंगे। तो भगवान के शुद्ध भक्त जब ऐसी पवित्र नदी में स्नान करेंगे, शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, तो गंगा भी पवित्र हो जाएगी। और ऐसे शुद्ध भक्त के विषय में बताया जाता है एक श्लोक मैंने लिखा है, आपको बताते हैं, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है और इसमें बोला यद पाद संश्रया सूतान मुनया प्रशमाया सत्य पुनंति उपश्रेष्ठ स्वर्धनीय पापों सेवया अनुसेवया, सॉरी, कह रहे हैं कि गंगा में बार बार स्नान करने से हमारे पाप खत्म होते हैं और बार बार और करेंगे तो और खत्म होंगे, और करेंगे तो खत्म। अब कब से हम लोग पैदा हो रखे हैं, कब से संसार में कितने पाप कर चुके हैं, रिकॉर्ड आपको भी नहीं मालूम, लेकिन जितनी बार भी स्नान करते हैं हमारे पाप खत्म होते हैं। लेकिन कह रहे हैं यद पाद संशय सुता, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनके तो पास जाने से व्यक्ति के इतने पाप खत्म हो जाते हैं, इतना पवित्र हो जाता है कि गंगा में बार बार स्नान करने से भी नहीं होता, बार बार स्नान करने से बहुत लंबे समय में पाप खत्म होते हैं ना, सारे के सारे। लेकिन एक शुद्ध भक्त के नजदीक जाने से क्या होता है, तुरंत पवित्र हो जाता है। फिर कह रहे हैं ये शाम संस्मरणात्म पुंसा, ऐसे भक्त जो भगवान के पवित्र नामों में कथा का गुणगान करते हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ऐसे भक्तों का स्मरण करने मात्र से, जो पुंसा जो व्यक्ति ऐसे भक्तों का स्मरण करता है, जैसे हम घर में बैठे अचानक कोई बोले श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जी का जीवन का स्मरण करने लग जाए, महाभागवत का स्मरण कर रहे हैं खाली, तो क्या होगा? ऐसे भक्तों का केवल स्मरण करने मात्र से सद्ध शुद्धंति वेग्रह, अगर घर में बैठ के कर रहा है तो घर भी शुद्ध हो जाएगा, आपको रूम फ्रेशनर डालने की जरूरत नहीं है, केवल भक्तों के स्मरण मात्र से। फिर कह रहे हैं किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोषण आसन आदि भी, केवल स्मरण मात्र से अगर घर परिवार पवित्र हो रहा है स्मरण मात्र से, तो आप सोचिए ऐसे शुद्ध भक्त जब हमारे घर में आ जाएं और हम उनको आसन दें, उनके चरणों को धुलाएं, उनका स्पर्श करें, तो इसकी क्या गति होगी ये सोचिए। चौथे पांचवें स्कंद में एक जगह आता है कि ऐसे शुद्ध भक्त जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे गृहस्थों के परिवार में जो कभी भक्तों को इनवाइट नहीं किया, भक्तों को अपने घर में नहीं बुलाया, पहली बार तो नारद जी एक जगह बताते हैं भागवतम में कि निर्धन रहना बहुत फायदेमंद है एक्चुअली, क्योंकि उनके घर के बाहर बोर्ड नहीं लगा होता, कौन सा, बिहेवियर ऑफ डॉग्स, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं खड़ा होता उनके घर के बाहर, तो इसलिए जो भक्त होते हैं ना वो मधुकरी करने के लिए कथा करने के लिए बस नॉक करते हैं, हरिबोल, घर में पहुंच जाते हैं, हरे कृष्णा, हाँ जी आइए प्लीज बैठिए, आसन देते हैं, जल देते हैं, पाद चरण धुलाते हैं, कहते हैं इसलिए निर्धन रहना बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि भक्त लोग पहुंच जाते हैं ऐसे के घरों में, लेकिन धनी परिवारों में जहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है आधा आधा किलो की मूछों के साथ, है ना, क्योंकि डराने के लिए ऐसी खड़ी करते हैं, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, मानो एक सिंपल गार्ड और एक भारी भारी मूछों के साथ गार्ड, 5,000 का फर्क होगा तुम्हें, हां नकली नहीं लगा, नहीं मतलब असली वाली मूछी, तो फर्क है, डराने वाला गार्ड चाहिए, यहां से खड़ा होगा घूरता रहा लोगों का, क्यों आ रहा है क्या है, और अगर कोई भक्त पहुंच जाए भक्त उसको ऐसे देख के डर जाएगा, तेरी भाई मेरे को क्यों देख रहे है ना, और बाहर लिखा हुआ कुत्तों से सावधान, भक्त बेचारा निर्मल भाई अंदर कुत्ते रहते हैं, इतना बड़ा घर कुत्तों के लिए बनाया, कहते वो मर गया बेचारा, कहते तो अब क्यों लगा रखा है, कहते अच्छा अच्छा क्यों लगाया मैं समझ गया, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयमेत पशुभि नराणाम, धर्मो हितेषु अधिको विशेषान धर्मे नहि न पशुभि समान। अगर कोई व्यक्ति केवल जी रहा है खाने के लिए, आहार सोने के लिए, निद्रा भय अपनी सुरक्षा के लिए, गार्ड भार है बड़े बड़े ताले कैमराज और मैथुनम संतान इत्यादि उत्पन्न करने के लिए,
भोग के लिए, तो ऐसा व्यक्ति किसके समान है? पशु भी समान।
ओके बिल्कुल ठीक लिखा है, सॉरी मेरे को ठीक लिखा है, कुत्तों से सावधान, नो प्रॉब्लम। सेल्फ रियलाइजेशन है भाई। तो कहने का क्या मतलब है कि नारद जी कह रहे हैं कि भक्त लोग नहीं जाते ऐसे परिवारों में, लेकिन जो निर्धन है, भक्त है, वो अपने घर में बुलाता है, वेलकम करता है ऐसे भक्तों का, चरण प्रक्षालन कराता है, उनसे कृष्ण की कथा सुनता है। इसके मतलब ये नहीं है कि जिनके घर में कुत्ते हैं वो ना भक्तों को बुलाएं, गार्ड को बोल के रखें भाई जब भी भक्त आ जाए इस कौन से आ जाए तो प्लीज बुलाइए अंदर लेकर आइए, हैं शुद्ध भक्त हैं भगवान के, बुलाइए उनको अंदर, कुत्ता है तो कुत्ते को साइड कर दे, नो प्रॉब्लम, तो वो भी बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे परिवारों में भक्त नहीं होते हैं, अब कहीं आप चलते फिरते देखो अरे देखो लिखा है बाहर, ऐसे उनको व्यंग नहीं करना, तो ऐसे परिवारों में भी भक्त होते हैं। और बता रहे हैं कि जिन परिवारों में भक्त लोग चरण नहीं डालते या जो गृहस्थ भक्तों को नहीं बुलाता अपने परिवारों में, तो उसका परिवार उसका घर किसके समान है? ऐसा वृक्ष, सूखा कांटेदार कटीला वृक्ष, सूखा वृक्ष जिसमें सांप और अजगर लटके रहते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान ऐसे शुद्ध भक्त जो प्रचार कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में आते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। आगे श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरि गृणंति ये भूरिदा जना। गोपियां बोल रही कि जो भगवान आपके भक्त है ना, वो आपकी कथा में, वही आपकी कथा ही उनके लिए जीवन है, उनके प्राण है कथा आपसे। और ऐसे भक्त क्या करते हैं, वो आपकी कथाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसलिए बहुत महान है। और क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा को, कृष्ण के संदेश को वो सारी जीवात्माएं, शुद्ध भक्त प्रचारक दूसरे भक्तों तक लेके जा रहे हैं, और दूसरों भक्तों को भी इस संसार में संघर्षरत जीवन से बचाकर, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं वहां से बचा बचा कर ला रहे हैं, इसलिए भगवान को अपने ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं, ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं। ऐसे भक्तों का संग इसलिए बताते हैं, थोड़ा सा भी संग हो जाए, कहते साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, थोड़ा सा भी संग कर लिया अगर तो पवित्र हो जाता है। फिर कह रहे हैं शास्त्रों में तुल्याम लवे नपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगत से मर्त नाम की मताशिता, कि ऐसे शुद्ध भक्तों का लव मात्र के संग अगर किसी ने कर लिया तो इसका क्या फायदा, इसकी तुलना नहीं की जा सकती किस चीज से, कि अगर किसी को स्वर्ग प्राप्त हो गया या किसी को मुक्ति प्राप्त हो जाए उससे भी तुलना नहीं कर सकते शुद्ध भक्त के संग से। तो फिर उसकी तो बात ही क्या किया जाए, जो संसार में भोगों में लगे हैं, जिनको मरना है और संसार केवल वेट कर रहे हैं मरने का, उनकी तो बात ही क्या करें, ऐसे भोगों की मुक्ति तक जो है बिल्कुल नगण्य बोल दी गई ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में आने से। तो भगवान कृष्ण ऐसे भक्त लोग जो अपना जीवन कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की कथा में समर्पित कर चुके हैं, ऐसे भक्तों के ऋणी बन जाते हैं, उनके चरणों के भी चरणों के रज लेते हैं भगवान। क्यों उनके रज ले रहे हैं? क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त सारे के सारे संसार को पवित्र कर रहे हैं, सारी कंडीशन सोल को पवित्र कर रहे हैं, तो उनके चरणों के रज लेके कृष्ण कहते हैं मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, भगवान कहते हैं मैं अपना अभिषेक करता हूं ऐसे भक्तों के चरणों के रज लेकर, इसलिए मेरे लिए भी वो पूजनीय है, कृष्ण के लिए भी पूजनीय है, वो सारे संसार के द्वारा पूजनीय है ऐसे भक्त। तो इस प्रकार जो है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे थे, इतना समय तो नहीं है, फिर भी देखिए भगवान कृष्ण जब कृपा करते हैं, अहितु की कृपा करते हैं किसी के ऊपर, तो क्या करते हैं? देखिए क्या देते हैं, उसको अपना धाम दे देते हैं।
अहो बकियं स्तन कालकूटं जिंघा सयादा पादपि साधवी,
ऐसे श्लोक में बोला है,
लेभे गतिं धातृजितांत कौन्यं कंवा दयालु शरणं ब्रजेव।
भगवान श्री कृष्ण के वध के लिए आए कौन? पूतना, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाकर आए कि कृष्ण को स्तनपान कराऊंगी और मार दूंगी। किस भावना से आई? कृष्ण को मारने के लिए। एक होता है फेवरेबल भक्ति करना, एक होता है अनफेवरेबल, तो बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन है ना।
और क्या किया? कृष्ण को अपना स्तनपान कराया।
कृष्ण देखिए, कृष्ण ने क्या किया उसके साथ? कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए जब स्तनों को पिया था। मारने आई थी लेकिन फिर भी अपनी माता की गति दी उसको, अपनी माता की गति, मृत्यु के पश्चात उसको अपनी माता की गति दी। स्तन का पान कौन करा सकता है? कृष्ण को मालूम तो मुझे मारने आए, थप्पड़ मार के खत्म कर सकते थे, फूंक मार के मार सकते थे, लेकिन स्तन पान किए। और कथा यदि पढ़ते तो पता चलता है कि जो बलि महाराज थे उनकी बहन थी, तो जब बलि महाराज से सारा का सारा तीन पगों में सब कुछ छीन लिया, जब वो आए थे तो उनकी बहन को लगा कितना सुंदर बालक है कि मेरा ये मेरा बालक होता काश है ना। लेकिन जब भाई से सब कुछ छीन लिया तो उनको लगा ये, तो भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी करी, बकियम अर्थात पूतना के रूप में कि ठीक है तुम मुझे स्तनपान कराना चाहते थे, मुझे अपना बच्चा चाहती थे, लो मैं तुम्हें वो गति देता हूं, मार कर मारा। तो भगवान कितने दयालु हैं कि मारने वाला भी आया उसको भी माँ की गति दी, माँ जाकर औदा दे दिया उसको। तो भगवान के भक्त भी कम नहीं है। हरिदास ठाकुर सदैव भगवान के नामों का जप कीर्तन करते थे, 300,000 नाम लेते थे, मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, फिर भी कुछ नहीं सोचा, नहीं लूंगा भगवान का नाम। और फिर मुस्लिम राजाओं ने क्या किया? पनिशमेंट दी कि मारो इसको, मार डालो इसको, 22 बाजारों में मारो अगर ये भगवान का नाम नहीं छोड़ता। लेना खूब पीता जा रहा था, कहता नहीं नहीं नहीं, खंड खंड है दे यदि जाए यदि प्राण तभव तना भी वदने हरि नाम, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, आप चाहे मुझे मार दो, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई उस समय सॉरी बोल देते, निकल जाते, माफ कर दो, निकल जाते, देश छोड़ जाते, मां जाके ले लेते, नहीं ऐसे सिद्धांत पेश कर रहे थे कि जेन के इन प्रकार चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में रहूं, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। मार लो मुझे 22 बाजारों में घसीट घसीट के लेके 12, मारने वाले भी खूब मार रहे लेकिन हरि का नाम ले रहे। रास्ते में खड़े लोग कह रहे भाई तू रिश्वत ले ले मेरे से, पैसे ले ले मत मार भक्त को। वो कहते नहीं चाहिए रिश्वत, अगर इसको मारा नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे मार दिया जाएगा, इसलिए मारने दो। हंटर पे हंटर मार रहे थे और हरिदास ठाकुर हरिनाम ले रहे थे। महाप्रभु ने जब अपने भक्त की स्थिति देखी तो क्या भेजा? सुदर्शन चक्र भेज दिया, जाओ उनका सर काट के लाओ। सुदर्शन चक्र वापिस आ गया, कहते महाप्रभु सॉरी। कहते सॉरी क्या हो गया? तुम तो कभी खाली वापस नहीं आए जब जब मैंने भेजा। कहते महाप्रभु प्रॉब्लम हो गई। कहते क्या? कहते वो हरिदास पिट तो रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, आपका नाम लेना भी नहीं छोड़ रहे, लेकिन साथ ही साथ एक प्रार्थना भी कर रहे। कहते क्या? कहते हैं वो, कहते हैं भगवान ये जो मुझे मार रहे हैं ना, इनको क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर देना। तो मैं कैसे मार सकता था उनको? ओहो ऐसा भक्त है मेरा, बताइए। तो महाप्रभु ने क्या किया? अदृश्य रूप में हरिदास ठाकुर का आलिंगन कर लिया और अब जितने भी हंटर पड़ रहे थे वो हरिदास ठाकुर जी को लग तो रहे थे बाहरी दृष्टि से, लेकिन कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो तो भगवान के नाम में गुणगान में व्यस्त थे, लेकिन ये सारे हंटर किसको लग रहे थे? महाप्रभु को लग रहे थे। और जब श्रीवास आंगन में उन्होंने अपना रूप दिखाया महाप्रकाश लीला में, तो हरिदास ठाकुर को बुलाया, इधर आओ हरिदास, तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो, मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दूंगा। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हें 22 बाजारों में पीटा जा रहा था? मैंने तो सुदर्शन चक्र भेज दिया था, लेकिन वो वापस आ गए क्योंकि तुम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे जो तुम्हें मार रहे थे। ये देखो मेरी कमर, अपनी कमर दिखाते महाप्रभु, और हंटर के निशान है उस पर। हरिदास ठाकुर ये देखकर मूर्छित हो जाते। तो भगवान की महिमा देखिए, यहां भगवान अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते, लेकिन भक्त अपने भगवान के जो रिलीजियस प्रिंसिपल उसको नहीं तोड़ना चाहते, वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए पूजनीय है ऐसे भक्त। तो इस प्रकार जो भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं, जो भगवान की कथा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, उनके नजदीक रहना चाहिए। नरसिंह भगवान कह रहे हैं भक्त प्रहलाद महाराज को कि भैया तुम्हारे जैसे भक्त को दर्शन करने से जो ये आंखें है ना, ये इनकी सार्थकता हो जाती है जब शुद्ध भक्तों का कोई दर्शन करता है। वरना ये आंखें तो दुनिया भर का उल्टा सीधा चीज ही देखती रहती है सुबह, लेकिन जब शुद्ध भक्तों का दर्शन करते हैं तो ये परफेक्शन ऑफ आइज है। तुम्हारे जैसे भक्तों का आलिंगन करने से वो देह का परफेक्शन है, अदरवाइज वो जीता जागता मुर्दा है व्यक्ति तो, लेकिन जब शुद्ध भक्तों का आलिंगन कर लेता है तो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तुम्हारे जैसे भक्तों का गुणगान कर ये जीवा है टंग जो पूरा दिन बड़बड़ बड़बड़ गड़बड़ कर कुछ ना कुछ करती रहती है, दुनिया भर में ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करती है जिनका कोई मतलब नहीं है। आज इस फिल्म का ग्लोरीफिकेशन, आज उस व्यक्ति का ग्लोरीफिकेशन, आज इस लीडर का ग्लोरीफिकेशन, शास्त्र कहते हैं ऐसे लोगों का ग्लोरीफिकेशन करने वाले लोग गधा घोड़ा ऊंट पशु के समान, जिन्हें कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं करते रहते सोच। कहते जिह्वा की परफेक्शन है जब शुद्ध भक्तों का गुणगान होता है, इसका उतना यूज होने से क्या हुआ वो काउंट होगा। इन हाथों से भगवान के भक्तों का चरण प्रक्षालन कर दिए, उनकी सेवा कर दी, तो ये परफेक्शन ऑफ हैंड्स है। पूरा शरीर हमारा जो है भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। आज पढ़ते पढ़ते हमें पता चला कि कह रहे जो भक्त पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं कृष्ण की, कृष्ण के गुणगान का, ऐसे भक्त कृष्ण को भी, कृष्ण के भी पूजनीय हैं। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी जैसे भक्त पूरे संसार में, इसलिए जगत गुरु कहा जाता है, पूरे संसार में इनका पूजन हो रहा है, कृष्ण भी इनका पूजन करते हैं। तो ऐसे भक्त और इनके इनके द्वारा बनाए गए असंख्य भक्त आज पूरे संसार में है। तो इस प्रकार के भक्तों का श्रवण के द्वारा हमें श्रवण करना चाहिए, संग करना चाहिए, इनके संरक्षण में रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा राय रामानंद से कि बताओ किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा लॉस किस चीज में है, किसी व्यक्ति का सबसे बड़ी हानि, किसी बड़ा सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा दुख क्या है किसी भी व्यक्ति का संसार में, सबसे बड़ा दुख फ्रैक्चर हो जाए वो दुख है, पैसा खत्म हो जाए वो दुख है, बीवी भाग जाए वो दुख है, बच्चे पढ़ाकू ना निकले वो दुख है, बिजनेस ठप हो जाए, क्या है सबसे बड़ा दुख? तो कहते नहीं, ये सब बेकार की चीजें हैं। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुख है कि वो भगवान के भक्तों के संग से दूर हो जाए, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि भक्तों के संग से दूर हो गया, अब वो नुकसान शुरू हो गया उसका। कई बार लोगों को लगता है भक्तों के संग में आया, भक्तों में कुछ गलतियां देख ली, उनकी कुछ निंदा कर दी, अरे सब बेकार है, मैं अकेला ही ठीक हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, हटाओ बीच में से, कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो भगवान है। भक्तों को पसंद नहीं करते देवर लोग, अरे ये भक्त, ये मैं जानता हूं, ये पेशे ये कहां से आया है, ये तो पीता बहुत था, ये तो खाता बहुत था, 900 चूहे खा के बिल्ली इस कौन को चली, अरे नहीं भैया 900 क्या, 9 लाख चूहे भी खा ले, 9 करोड़ पाप भी कर दे, कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मानि परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचारे। भैया कितने भी पाप किए हो, काउंटिंग नहीं, काउंटलेस पाप किए हो, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ। किसकी शरण में? कृष्ण की शरण में आ जाओ। क्या करूंगा? अहम त्वां सर्व पापे भयो, जितने भी पाप हैं आज तक उन सबको माफ कर दूंगा। फिर मत गिनो 900 चूहे, 9000 चूहे, 9 लाख चूहे, नो प्रॉब्लम, जितने भी खाएं नो प्रॉब्लम, एक बार फिर मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। बताते हैं जो व्यक्ति मांस खाता है, जिस गाय का खाया, किसी का खाया, तो बताते हैं इतने जन्म लेने पड़ते हैं उसको, इतनी बार कटना पड़ता है, इतनी बार मरना पड़ता है जितनी उस गाय के शरीर में बाल थे। कोई बोलता है आज इराक में ये हो रहा है, आज उस वाले यहां पर ईरान में ये हो रहा है, साइबेरिया में ये हो रहा है। वो यूं हो रहा है क्योंकि लोगों ने खाया है, वध किया है लोगों ने इंद्र तृप्ति के लिए, और आज ठीक उसी प्रकार कट रहे हैं जिस प्रकार उन्होंने काटा था। रिएक्शन है, कुछ यहां कट रहे हैं, कुछ किसी और योनि में कट रहे हैं, कोई और पशु के द्वारा खाए जा रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं बार बार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भगवान कह रहे हैं मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, क्या करना है खाली मेरी शरण में आना है। और हम देखते हैं नहीं नहीं, ये व्यक्ति तो भक्त बन ही नहीं सकता, मैंने देखा है इसको चावला चिकन पे खड़ा हुए। मैंने देखा है इसको अंग्रेजी शराब की सरकारी दुकान पे, मैंने देखा। तो ये तो भक्त हो ही नहीं सकता, लेकिन अब वो छोड़ चुका है, अभी देखा है क्या? अगर देख भी लो तो भी पाप नहीं करना आपको, फिर भी अपराध नहीं करना। पता नहीं क्यों खड़ा, किताब लेके खड़ा था, शायद इसलिए खड़ा वहां पर, एक बार मैं ही खड़ा था, रथ यात्रा थी, हम खूब पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अब कोई व्यक्ति शराब के ठेके बना जाए, हर कोई डरे भैया यहां पहुंच जाए, अरे नहीं चलो, अरे चलो। मैंने कहा इसका भी तो उद्धार होना चाहिए, तो मैं चला गया। मैं कहा भाई साहब, कहते भाई साहब धोती कुर्ता में यहां का, मैंने कहा 100 रुपए दो हमें। तो मैंने कहा कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूं। मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर उजाड़ रहे हो बदतमीज, सीधे साधे चलते हुए लोगों को गिराते हो, गंदा सड़ा हुआ पानी पिलाते हो, पाप लगेगा। कहता भाई साहब नौकरी है, घर भी पालने। मैं कहा ठीक है, जब तक समझ नहीं आती तब तक ये किताब पढ़, निकाल 20 रुपए। कहता क्या होगा? मैं कहा कुछ तो होगा, पढ़ो उसको, जीवन का मतलब मालूम पड़ेगा। अब कोई मुझे पीछे से देता, कोई फोटो खींच लेगा, अरे प्रभु जी आप ही लगे हो लाइन में। तो अगर कहीं दिख जाए कुछ ऐसा तो भैया पूछ लो जाके क्या हुआ। पूजा वहां खड़े थे और थोड़ा हिल भी रहे थे, भैया हिल तो इसलिए रहते क्योंकि रोज आरती में डांस करने की आदत है, तो इसलिए भक्त हिलते रहता है जैसे। तो हमें लगा प्रभु जी शायद कहीं ऐसे कुछ करके हिल रहे थे। नहीं नहीं, वो किताब ले ली थी, पैसे लेके बाहर आ रहा था इसलिए खड़े थे बाहर, है ना। तो जो लोग अपराध कर देते हैं ऐसे भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, फिर भगवान उनको भक्तों के संग से दूर कर देते हैं। तो बस ऐसे भक्तों के संरक्षण में रहना है, भक्ति करनी है, कथा सुननी है, और अपराधों से बचना है, भक्तों की गलतियां नहीं देखनी, ठीक है कि नहीं। और इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से वो सब लाभ उठा सकेंगे जो इस श्लोक में बताया, हम भी भक्त बन सकेंगे, और जिनकी पूजा हम करते हैं ना उनके लिए भी पूजनीय बन जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। भक्ति इसलिए नहीं करनी कि कृष्ण के पूज्य बन जाए, अपराध है, ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की शिला प्रभुपाद की जय।